माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर
गोपी जन वल्लभ गिरिवर
वैष्णव वृंद की जय श्री श्री निताय गौर हरि की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। कौन सा श्लोक है?
45
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं
चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 12वां अध्याय ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। 45 को हिंदी में क्या था? 45 श्लोक संख्या 45। धन्यम
यशस्यम
आयुष्यम
पुण्यम
स्वस्ति
अयनम
महत्
स्वर्ग्यम
द्रव्यम
सौमनस्यम
प्रशस्यम अघ
मर्षणम।
तो धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
प्रशंस्यम अघमर्षणम
प्रशंस्यम अघमर्षणम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
प्रशस्यम अघमर्षणम
प्रशस्यम अघमर्षणम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
प्रशंस्यम अघमर्षणम
प्रशंस्यम अघमर्षणम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
प्रशंस्यम अघमर्षणम
प्रशंस्यम अघमर्षणम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
प्रशस्य
मघमर्षणम्
धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
स्वस्त्यम अयनम महत्
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
यशस्य
मघमर्षणम्
धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
पुण्यम स्वस्त्ययनम महत्
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
यशस्यम अघमर्षणम
यशस्यम अघमर्षणम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
धन्यम यशस्य मायुष्यम
पुण्यम
स्वस्त्ययनम महत् स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम
प्रशस्यम
अघमर्षणम्
धन्यम
यशस्य मायुष्यम
पुण्यम स्वस्त्ययनम
महत् स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्यम अघमर्षणम्
धन्यम
धन देने वाला
यशस्यम
यशस्यम
ख्याति
देखने वाला
आयुष्यम
आयुष्यम आयु बढ़ाने वाला
पुण्यम
पुण्यम
पवित्रम
पवित्रम
पवित्र
पवित्र
स्वस्ति अयनम
स्वस्ति अयनम
कल्याण उत्पन्न करने वाला
कल्याण उत्पन्न करने वाला
महत
महत
महान
महान
स्वर्गीयम
स्वर्गीयम
स्वर्ग प्राप्त कराने वाला
स्वर्ग प्राप्त कराने वाला
ध्रुव्यम
ध्रुव्यम
या ध्रुवलोक
या ध्रुवलोक
सौमनस्य
सौमनस्य
मन को भाने वाला
मन को भाने वाला
प्रशस्यम
प्रशस्यम
यशस्वी
यशस्वी
अघमर्षणम
अघमर्षणम
समस्त पापों का नाश करने वाला
समस्त पापों का नाश करने वाला
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति यश तथा दीर्घ आयु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह आख्यान इतना यशस्वी है, यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। तात्पर्य, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, इनमें सभी शुद्ध भक्त नहीं होते। कुछ कर्मी हैं जो प्रचुर संपत्ति की कामना करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल यश चाहते हैं, कुछ स्वर्गलोक को या ध्रुवलोक को जाना चाहते हैं और कुछ देवताओं को प्रसन्न करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैत्रेय ने यहाँ पर सबों को ध्रुव महाराज का आख्यान सुनने की संस्तुति की है जिससे वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकें। यह संस्तुति की जाती है कि भक्तों, अकाम, कर्मियों, सर्वकाम तथा ज्ञानियों, मोक्षकाम को भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे उन्हें जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसी प्रकार यदि कोई भगवान से भगवान के भक्त के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसे भी वही फल मिलेगा। भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यों तथा आचरण में कोई अंतर नहीं होता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारकणे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज ने अपना जीवन सफल बना दिया। श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, कथाएं हैं, जिनमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे मनुष्य जीवन हमको सार्थक करना चाहिए। जितने भागवत के विषय हैं उनमें से भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आप में से कोई वो श्लोक बता सकते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत के अंदर कौन से विषयों की चर्चा की गई है? बहुत अच्छा। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतयः मन्मंतरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो सर्ग का मतलब क्या है? भगवान महाविष्णु की सृष्टि। विसर्ग का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि। उसके बाद स्थानम का मतलब क्या है? अलग अलग जो स्थान होते हैं इस ब्रह्मांड के भीतर, उनका पालन कैसे होता है। और फिर पोषणम,
भक्तों का पोषण भगवान कैसे करते हैं,
भक्तों का पोषण कैसे भगवान करते हैं। और फिर ऊत, यह ऊती कर्म वासना और कर्म करने के लिए जो प्रेरणा होती है, क्रियाशील होने की प्रेरणा जो होती है। और फिर मनमंत्र मतलब
कैसे शासन करते हैं
मनु, मनु के जो जीवन की अवधि होती है उसको मनमंत्र बोलते हैं। मनु और अंतर, तो दो मनुओं में जो अंतर होता है उसको मनमंत्र बोलते हैं। जैसे कि दो सूर्योदय के बीच में जो समय होता है उसको एक दिन बोलते हैं, ऐसे तो दो मनुओं के बीच में जो अंतर होता है मनमंत्र। तो इसमें लगभग 70 चतुर्युग होते हैं, उससे थोड़ा अधिक। फिर ईश अनुकथा, ईशानुकथा का मतलब है भगवान की कथाएं, भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं। और फिर निरोधो मुक्तिर आश्रय है, निरोध मतलब जो भौतिक सृष्टि समाप्त करना, संपूर्ण भौतिक सृष्टि के जो कार्यकलाप है उनको समाप्त कर देना। फिर मुक्ति, संसार के चक्र से मुक्त हो जाना। और आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, जो इन नौ जो पूर्व लिखित जो विषय हैं उनके आश्रय हैं भगवान कृष्ण। तो ये दो 10 विषयों की चर्चा श्रीमद् भागवत में की गई है। इन सब का संबंध है वास्तव में। तो अभी ध्रुव महाराज की कथा कहाँ कहाँ आ सकती है? ध्रुव महाराज की कथा में कौन से विषय आएंगे? ईशानु कथा और उतयः, ठीक है, उतयः भी उती
पोषण,
पोषण भगवान कैसे अपने भक्तों को पोषण करते हैं। कैसे ध्रुव महाराज भक्त बनने गए ना जंगल में, तो कैसे भगवान ने उनका पोषण किया, कैसे आके उनकी रक्षा की, कैसे उनको दर्शन दिया, उनकी इच्छा पूरी की। कभी भगवान इच्छा पूर्ण करके पोषण करते हैं भक्तों का, कभी उनकी इच्छा नहीं पूरा करके उनका पोषण करते हैं। तो भगवान अपनी तरह से पोषण करते हैं भक्तों का। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग हैं जिनमें ये 10 विषयों का प्रकाशन होता है या उनके प्रति अधिक जानकारी दी जाती है। तो इनको हमें सुनना चाहिए। कभी कभी सृष्टि लीला होती है कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, तो इसका भी वर्णन यहाँ पाया जाता है। तो ध्रुव महाराज का प्रसंग हमें सुनना चाहिए। यद्यपि ये वृंदावन की लीलाओं के बराबर नहीं है, फिर भी एक दृष्टि से बराबर ही है, क्योंकि ये भगवान और उनके भक्तों की लीला है। तो यहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज की कथा, इसको हमें सुनना चाहिए। ये आख्यान शब्द का प्रयोग किया गया है। आख्यान मतलब क्या है? आख्यान शब्द का अर्थ क्या है? एक प्रसंग, एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी कहानी। छोटी छोटी कहानियों को उपाख्यान बोला जाता है। छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, वो है उपाख्यान, और बड़े जो प्रसंग होते हैं उनको आख्यान बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज के आपके आख्यान का उल्लेख हो रहा है। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि इनका श्रवण हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? श्रीमद् भागवत में देखा जाएगा कि हर एक प्रसंग के बाद में फल श्रुति होती है कि इस प्रसंग को श्रवण करने से हमको क्या फायदा होगा, क्या फल मिलेगा इससे। तो तरह तरह की चीज़ें बताई जाती है। किसी को कहीं कहा जाता है कि बुरे स्वप्नों से आप मुक्ति पाएंगे, फिर भूत प्रेत आपको तंग नहीं करेंगे, ये सुना तो कहीं आप स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेंगे, या आप वैकुंठ लोक की प्राप्ति करेंगे, आप धनी बन जाएंगे, आप यशस्वी बन जाएंगे। तो इस तरह के फल श्रुति हम बताई गई हैं सारे शास्त्रों में। तो यहाँ इस श्लोक में क्या क्या फल श्रुति बताई गई है, क्या लाभ मिलेगा अगर आप ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे तो, फिर से पढ़ते हैं। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपने संपत्ति, यश तथा दीर्घ आयु की इच्छा को पूरा कर सकता है। तो इस कथा को सुन के क्या होगा? संपत्ति की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी और आयु की वृद्धि होगी। इसलिए हम सब इस संस्था से जुड़े हैं, सही है ना? हमारे धन को बढ़ाने के लिए, हमारे यश को बढ़ाने के लिए और हमारी आयु को बढ़ाने के लिए, ताकि हम लंबे आयु जी सके। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है। तो ये भी हमारा इस्कॉन संस्था से जुड़ने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकते हैं अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकते हैं। देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो हमारा यहाँ इस्कॉन से जुड़ने का उद्देश्य ये भी है कि हम देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, बराबर। क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। तो हम भक्ति में आते हैं हमारे सारे पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि हमारे इस संस्था से जुड़ने का उद्देश्य क्या है। जितने भी उद्देश्य हैं वो सब यहाँ बताए गए, बराबर है। आप कितने भक्त मानते हैं कि यहाँ जो बताया गया है वो हमारे इसको आने का उद्देश्य है या जीवन का उद्देश्य है? हाथ ऊपर कीजिए। ये जीवन का उद्देश्य है
परमेश्वर को प्राप्त करना है, लंबी आयु यानी अध्यात्म जीवन जगत में।
ये बहुत बुद्धिमान की बात है। लेकिन जैसे यहाँ साधारण इसका अर्थ है, ये सही है कि नहीं, तो ये प्रश्न आता है। तो ऐसी बातें क्यों बताई गई इधर? श्रीमद् भागवत कैसा है? अमन पुराण है। कोई श्लोक बताएंगे? ठीक है, बोलो। तो श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, कि ये पुराण कैसा है? अमल, इसमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। गंदगी मतलब भौतिक जो भी विचार आदि है, भौतिक कार्य आदि है, इसमें नहीं है। और इसमें जितने भी गलत प्रकार के भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने की प्रेरणा जो है, वो सारे धर्मों को त्याग दिया है। इनको क्या कहा गया है? कैतव धर्म। तो ये अमल पुराण है। तो ऐसे अमल पुराण में बार बार बताया गया है, भागवत पुराण अमल पुराण है, 12वें स्कंद में भी बताया गया है। क्या बताया गया है? कोई बताएंगे? पारमहंस्यम वैष्णवानाम प्रियम, वहां भी बताया गया है कि अमल पुराण है। तो बार बार ये बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब जहाँ, अमल मतलब जहाँ कोई भौतिक कामना नहीं है, हाँ केवल शुद्ध भक्ति ही है। ये शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, रसिक शास्त्र है, रसिक भक्तों के लिए है, जो भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संवितम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका है। हे रसिक जनों, ये रस शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, इसमें केवल भक्ति के रस का उल्लेख है, इसलिए इस रस का पान कीजिए। तो श्रीमद् भागवत खोलते हैं तो क्या देखते हैं? अरे क्या रस मिलते हैं हमको, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, धन बढ़ाओ, आयु बढ़ाओ, संपत्ति बढ़ाओ। तो एक तरह का विरोधाभास लगता है ना, कि एक तरह तो रस शास्त्र है ये, और फिर यहाँ पे इतने सारी चीजें बताई गई है, क्यों बताई गई है इनको?
ताकि हर प्रकार के श्रोता इसकी उसको पढ़ने के लिए आकर्षित हो सकते हैं, जैसे जो भौतिक कामना है फिर मुक्ति की कामना है, तो वो भी आकर्षित होंगे और धीरे धीरे शुद्ध हो सकते हैं।
क्योंकि हर प्रकार के श्रोता होते हैं ना, ऐसा जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, इनमें सभी शुद्ध भक्त नहीं होते। केवल शुद्ध भक्त नहीं होने का प्रश्न है कि भक्त ही नहीं होते, है ना? तो यहाँ संसार में तरह तरह के विभिन्न धारणाओं के व्यक्ति रहते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो सबको आप बोलेंगे भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, शुद्ध भक्ति करिए, कुछ मांगिए नहीं, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे लिए नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसे हुआ ना, ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा कि अरे बच्चा, तुम तो छोटे बच्चे हो, 5 साल के बच्चे हो, ये सब तपस्या करके तुमको बड़ा साम्राज्य एकत्र करना है, ये सब तुम्हारी आयु नहीं है ये सब करने के लिए। तुम राजमहल में पाले पोसे गए बच्चे हो, वहाँ की सुख सुविधाओं के आदि हो, अब यहाँ तुम जंगल में जाओगे, वहाँ कितने जहरीले सांप होते हैं, जंगल में प्राणी होते हैं खतरनाक, वहाँ बारिश, ठंडी, गर्मी, कैसे सहन करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, केवल कंदमूल पे कैसे जियोगे, ये सब भूल जाओ। तब तुम बड़े हो जाओगे, तब तुम ये तपस्या करना और फिर तुम भगवान की प्राप्ति की सोचना, अभी तुम्हारी आयु है खूब खेल क्रीड़ा करने की। तो ध्रुव महाराज ने उस समय क्या कहा नारद मुनि को, क्या कहा ध्रुव महाराज ने?
यदि आप मुझे मेरी इच्छा को पूर्ण करने में मदद कर सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए, नहीं तो फिर मैं ये कर नहीं पाऊंगा।
नहीं तो कृपया हट जाइए, मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी है। मेरी इच्छा क्या है? साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य को मुझे प्राप्त करना है कि जो मेरे पिता दादा से भी बड़ा राज्य, ऐसा राज्य मुझे प्राप्त करना है। 5 साल की आयु में ऐसा एक ऐसी कामना रखना, साधारणतः 5 साल के बच्चे किस तरह की कामना करते हैं, मुझे को खिलौना चाहिए, मुझे को खाने के लिए चाहिए। लेकिन ये बच्चा क्या मांग रहा है? विश्व साम्राज्य मांग रहा है, है ना? ऐसा अद्भुत चीज। तो नारायण भगवान लक्ष्मी देवी भी वैकुंठ में आश्चर्यचकित हो गए, नारद मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए बाद में भी हमने देखा पिछले थोड़े श्लोकों में, अभी भी वो सब आश्चर्यचकित है कि इतनी दृढ़ता इस छोटे से बच्चे में कैसे आ गई। तो नारद मुनि जैसे भक्त आए, उन्होंने शुद्ध भक्ति की बात करना करने के प्रयास किया, लेकिन ध्रुव महाराज अपने लक्ष्यवेधी, लक्ष्यवेधी का मतलब क्या है, बाण मारना पे सिर, मुझे प्राप्त करना ही है गृह व्रतानाम, वो कथा मालूम है ना महाभारत में आपको क्या लक्ष्यवेधी कौन बता सकते ये कथा? द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, क्या थी वो कहानी?
द्रोणाचार्य जब शिष्यों की परीक्षा ली थी तो उन्होंने एक पक्षी रखा था पेड़ के ऊपर।
कौन सा पक्षी, नकली की असली?
नकली पक्षी रखा था नकली पक्षी रखा था और सबको एक एक को बोल रहे थे कि आपको उस पक्षी के आँख को मारना है, तो एक एक करके आते थे
तीर से
मारना है, तो एक एक आते थे पांडव कौरव वगैरह, सब को पूछते थे कि आप पहले तीर लगाने के पहले ही पूछते थे कि आपको क्या मारना है, तो आँख को मारना है, तो क्या देख रहे हैं, तो सब बोलते थे कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहा है, पक्षी का आँख दिखाई दे रहा है, तो उनको बोलते थे कि आप मारो नहीं, तो उनको छोड़ देते। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन को पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे बस वो पक्षी का आँख दिख रहा है, तो बोलते कि मारो, तो बराबर मारते हैं।
बाकी सब यहाँ तक युधिष्ठिर को भी पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या देख रहे हो? मैं आपको देख रहा हूँ, पक्षी को देख रहा हूँ। दुर्योधन को पूछे क्या देख रहे हो? मैं जंगल को देख रहा हूँ, पेड़ को देख रहा हूँ, आपको देख, सबको देख रहा हूँ। लेकिन जब अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? मैं केवल आप देख रहा हूँ, पक्षी का। ठीक है, तुम ही एकमात्र तीर छोड़ने लायक व्यक्ति हो, छोड़ो तीर, और तीर जाके सीधे लक्ष्य को मिल जाती है ना। तो इस तरह से जो भी कार्य करते समय यदि हम इतनी दृढ़ता एकाग्रता नहीं रहती है तो कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। बहुशाखा ही अनंताश्च, थोड़ा भी इधर किया, थोड़ा उधर किया, थोड़ा ऐसा किया, थोड़ा वो भी किया, थोड़ा ये भी किया, तो किसी में भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। एक पैर इधर एक पैर उधर तो नहीं होगा, नहीं, एक चित्त चाहिए। परंतु समस्या क्या है कि ज्यादा लोग ये एकाग्र चित्त भौतिक भोग में बढ़ाते हैं। तो ध्रुव महाराज कभी ऐसे था, मन स्थिर था, मुझे साम्राज्य चाहिए, बड़ा वैश्विक साम्राज्य चाहिए, कोई साधारण राज्य नहीं, मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, इसके लिए मैं पाकर ही रहूंगा। तो इसलिए नारद मुनि ने भी जाके शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, शुद्ध भक्ति छोड़ो, मुझे राज्य चाहिए। तो इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जो समाधि चाहिए, जो एकाग्रता चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, एक लक्ष्य प्राप्त करने की जो एक पूरा उत्साह चाहिए, वो ऐसे व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं होता है जिनके जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त है, बहुत ज़्यादा आसक्त है। तो ध्रुव महाराज भी ऐसे थे, नारद मुनि जैसे व्यक्ति ने जाके उनको शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बता पाए, उनको समझा नहीं पाए कि ये सब भौतिक इच्छा छोड़ो, भगवान की भक्ति करो। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो और इस तरह से तपस्या करो। तो देश काल पात्र के अनुसार जो गुरु होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे लोगों को भक्ति के रास्ते में लाना, कभी सीधे रास्ते से लाते हैं, कभी टेढ़े रास्ते से लाते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से लाते हैं, कभी अप्रत्यक्ष रूप से लाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग नहीं मानते डायरेक्ट रास्ते को, फिर उनको थोड़ा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है तुमको क्या चाहिए करो, तुम जब तो करो ना, हो जाएगा सब, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब विद्यार्थी आते हैं छात्र, वो अब जब करने बोलो नहीं नहीं मुझे नंबर अच्छा मिलना है परीक्षा में, मुझे ये चाहिए, ठीक है तुम जब करो तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएगा, करो तुम्हारा नंबर मिल जाएगा, तुम ऐसा करो तुमको ये तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे ये नहीं हो रहा, बस जब करो हो जाएगा, दो चिंता नहीं करो। वैसे हम लोग ऐसा प्रचार नहीं करते हैं, परंतु लोगों की इच्छा होती है कि चलो हम ऐसे करेंगे तो ये लाभ मिलेगा। तो किसी ये न के न प्रकार मन कृष्ण कृष्ण निवेश ये, तो किसी न किसी प्रकार से लोगों को कृष्ण के प्रति लेके आना, ये नारद मुनि कहते हैं कैसे न कैसे तो उनको लेके आना भगवान के चरण कमलों में, फिर एक बार वो आ जाएंगे फिर भगवान उनको पकड़ लेंगे, एक बार पकड़ लिया फिर भगवान नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो उस समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं उधर और सारे भक्त नहीं है, कोई वैरागी है, कोई त्यागी है, कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, कोई योगी है, कोई क्या है। सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्ति के बारे में ही बोलना चाहते थे, ये तो प्रारंभ से ही स्पष्ट हुआ, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न जो राजा परीक्षित ने किया था वो ये था कि मृत्यु के द्वार पर खड़े होने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसको क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, किस वस्तु के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। और उस समय सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया था, एक श्लोक में उत्तर दे दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। इच्छता अभयम्, जो अभयम् की इच्छा रखता है और जो मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, स्वाभाविक है कि उसको भय होगा, अरे मृत्यु आएगा मृत्यु आएगा, थोड़ा डरेगा ना। तो जो मृत्यु के द्वार पे खड़ा है ये आशा कर सकते हैं कि उसके मन में भय होगा। तो यदि इच्छता अभयम्, यदि वो निर्भय होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए, किनका, भगवान हरिश्वर। तो भगवान श्री हरि के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना चाहिए जिससे कि वो भय से मुक्त हो जाए। इसलिए ये भी एक वैधि भक्ति का एक श्लोक है, ये प्रारंभिक अवस्था में भी भक्ति में हम ये सुनते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले ये बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए, केवल श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान के बारे में करना चाहिए बस। यदि परीक्षित महाराज अकेले होते तो शायद उन्होंने इतनी सारी बातें और फलश्रुति ये वो सब बताया होता कि नहीं बताया होता, ये पता नहीं, शायद सीधे वृंदावन लीला पे पहुंच गए होते, क्योंकि परीक्षित महाराज तो पहले से ही शुद्ध भक्त थे, उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और माँ के जो जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मारने के लिए। देखिए आजकल जो बम आदि होते हैं जिनका विस्फोट होता है, उनको आप नियंत्रित रूप से विस्फोट नहीं करा सकते, आप किसी एक शहर में बम को फेंकोगे और कहो कि जहां बम फटेगा केवल मेरे परिवार को छोड़ के बाकी सबको मारना, ऐसे नहीं होगा। बम जब फटेगा तो जो भी उस परिसर में है सब की मृत्यु हो जाएगी। परंतु ब्रह्मास्त्र ऐसे है जो गिने चुने ठीक अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करेगा, केवल उसी व्यक्ति को मारेगा और किसी को नहीं मारेगा, ऐसे भी संभव है मंत्रों के द्वारा। और ऐसे भी ये अस्त्र होते हैं जिनका विस्फोट जब होगा तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश भी कर सकता है। तो अश्वत्थामा ने ऐसे अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र, जो केवल एक बच्चे को बच्चे के पास जा रहा था, वो भी गर्भ के अंदर। तो देखिए कैसे वैदिक सभ्यता में इतनी उन्नति थी कि ऐसा भी कर सकते थे। तो उन्होंने अश्वत्थामा ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में स्थित बच्चे के उन्होंने के ऊपर लक्ष्य बनाकर छोड़ा और उत्तरा श्री कृष्ण के पास आई, त्राही त्राही मेरी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण प्रकट हो गए उत्तरा के गर्भ में और उन्होंने राजा परीक्षित जो उस बच्चे की रक्षा की। वो गर्भ का वास्तव में नाश हो गया था परंतु भगवान ने रक्षा की, जीवित किया। और वो बच्चा देख रहा था कि ये कौन है, मेरे गोल 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 घूम रहे हैं। बच्चा माँ के गर्भ में था और बच्चा देख रहा है कि ये कौन तेजस्वी व्यक्ति जो बहुत सुंदर है, चार भुजाएं वाले है, हसमुख चेहरा है, ये घूम रहा है। तो बच्चा देख रहा था और जब जन्म लिया बच्चे ने, उस समय भी वो परीक्षा कर रहा था सारे चारे दिशाओं में कि वो व्यक्ति कहाँ है जिनको मैंने देखा था अंदर माँ के गर्भ में देखा, वो कहाँ गया। तो ऐसी वो परीक्षा कर रहे थे, तो नाम आ गया
परीक्षित।
तो ऐसे राजा परीक्षित जो बचपन से शुद्ध भक्त थे, माँ के गर्भ से जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, बचपन में भी वो भगवान की पूजा अर्चा करते थे, ऐसे वर्णन है भागवत में। तो ऐसे राजा को क्या आवश्यकता थी ये सब सुनाने के लिए कि आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पहले से इनके पास सब था, राजा परीक्षित के पास। तो सुखदेव गोस्वामी ये सब बोलने के लिए इसलिए बाध्य हो गए क्योंकि वहां ये सारे तरह तरह के ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। यदि वो केवल वृंदावन लीला पे चले जाते तो इनको पता ही नहीं चलता ये सब क्या बोल रहे हैं। इसलिए उनको भी सबको बांध के रखना था। जब वहां से लकड़ियां होती हैं तो लंबी रस्सी चाहिए होती है सबको बांध के फिर रखने के लिए। तो विविध प्रकार के ये सब लोग बैठे थे सामने, इसलिए उन सबको बांध के रखना था, उन सबको इस स्तर पे लाना था धीरे 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 से, पहले 9 स्कंदों में, ताकि अंततः दशम स्कंद पे आके फिर वृंदावन की लीला सब सुन सकें। लेकिन उस स्तर तक लाने के लिए उनको 6 दिन गए या 5 दिन जो भी है, 9 स्कंद लगे उनको। फिर 9 स्कंद सुनाने के बाद फिर वो तैयार थे, अभी उनकी श्रद्धा बढ़ी थी, उनका हृदय शुद्ध हुआ था सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये सब सुन के, अभी वो तैयार थे वृंदावन लीला सुनने के लिए। इसलिए पहले 9 स्कंदों में वृंदावन लीला की का वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में पाया जाता है, जैसे उद्धव जी और विदुर के बीच में 3रे स्कंद में संक्षिप्त वृंदावन लीला है और प्रथम स्कंद में भी थोड़ा कुछ कृष्ण लीला है, परंतु अधिक जो विषय है पहले 9 स्कंद में वो भगवान विष्णु या नारायण से संबंधित हैं या अन्य अवतारों से संबंधित हैं जो वैकुंठ लोक से संबंधित हैं। वृंदावन और वैकुंठ लोक एक ही है या अलग है? हाँ, तो क्या वैकुंठ लोक भगवान का धाम नहीं है?
एक होते हुए अलग है,
ऐसे कैसे?
रस का अंतर है, रस तू में एक है, रस में अंतर, रस में अंतर है,
रस में अंतर है, स्थान में अंतर नहीं है, स्थान में भी अंतर है। वैकुंठ लोक अनंत है और इन अनंत वैकुंठ लोकों में भगवान अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में निवास करते हैं और उनके भक्त भी वहां पे उनके साथ में रहते हैं और ऐश्वर्यशाली भाव में उनकी उपासना करते हैं। तो वैकुंठ लोकों में से सबसे श्रेष्ठ वैकुंठ जगत में जो लोक हैं, इन वैकुंठ लोकों के अतिरिक्त एक और लोक है जिसको कृष्ण लोक कहते हैं। ये कृष्ण लोक सबसे महत्वपूर्ण लोक है आध्यात्मिक जगत में और इस कृष्ण लोक के तीन भाग हैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। वो तीन भाग हैं द्वारका, मथुरा और वृंदावन। तो यहां पर इस स्थान में भगवान द्विभुज रूप में रहते हैं, दो हाथ वाले रूप। वैकुंठ लोकों में चार चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो दोनों ही जगह वैकुंठ लोक, अनंत वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक, ये सब भगवान का धाम है। परंतु कृष्ण लोक में जो वृंदावन है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी ने इन सारी अन्य कथाओं को बोलकर भी ये सारे जो वैकुंठ लोक की कथाएं हैं उनको भी बता दिया और तरह तरह के प्रलोभन भी सबको दिए। जो कर्मी हैं उनको अच्छा लहरा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, चलो चलो हम सुनते हैं ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं। जिसको जोड़ा राजा बनना है, ये बनना है, अच्छा हमको साम्राज्य प्राप्त होगा, चलो चलो सुनते हैं। किसको ज्ञान प्राप्त करना है कि ये ऐसे कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अच्छा सुनते हैं, चलो उत्सुकता होती है सुनने के लिए। और जिनको शुद्ध भक्ति चाहिए उनको तो मिलेगा ही। तो इस कारण से ये तरह तरह के अन्य प्रलोभन यहाँ दिए जाते हैं जो लाभ है, वास्तव में है ये। ये सब करने से ये लाभ भी मिल सकते हैं, परंतु भक्तों को ये सब नहीं चाहिए। भक्त लोग ये सब इसकी परवाह नहीं करते हैं। भक्त लोग इन कथाओं को सुनते हैं केवल शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय शुद्ध करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी रोज टोटा गोपीनाथ मंदिर जाया करते थे, जगन्नाथपुरी में वो रहते थे, गंभीरा में। तो सुबह के समय वो अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ मंदिर में रहते थे, फिर हरिदास ठाकुर के पास जाते थे सिद्ध बकुल में, और फिर थोड़ा अपना प्रसाद आदि लेकर दोपहर में थोड़े समय के लिए विश्राम करते थे और फिर अपने भक्तों के साथ फिर बैठते थे। वो टोटा गोपीनाथ में जाते थे, क्यों जाते थे, दर्शन तो करते थे और क्या करते थे, गदाधर पंडित के मुखारविंद से वो श्रीमद् भागवत सुनते थे। गदाधर पंडित जब भागवत का पठन करते थे तो इतना मधुर होता था कि भक्त लोग केवल मनमुग्ध हो जाते थे, मुक्त होके बैठ जाते थे वहां पे। वो सारे दुनिया को भूल जाते थे गदाधर पंडित के भागवत पठन को सुनकर, और वो तरह तरह के धुन में हर एक श्लोक को का पठन करते थे। एक ही श्लोक को बार बार बोलते थे और हर बार अलग किसी राग में या धुन में बोलते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी जाके उनके सामने बैठ जाते थे, सारे भक्त आके उनके सामने बैठते थे। और ऐसा बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा लगातार 108 बार सुना। वो ऊब नहीं गए, अरे आइकले काय परत परत तेज गोष्टी काय नवीन सांगा ना, कंटाळा आला तेज ऐकून, असं नाही म्हटलं। तर चैतन्य महाप्रभूने 108 एकाच्या नंतर एकाच तीच कथा, ध्रुव महाराज की कथा सुना, फिर सुनाओ, फिर सुना, तीसरी बार और सुनाओ, फिर सुना और सुनाओ, 108 बार। फिर प्रहलाद महाराज की कथा सुना और सुनाओ और सुनाओ, ऐसे हरेक प्रसंग को लेकर वो बार बार सुनते थे। क्योंकि वो जानते थे कि श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण से अभिन्न है और चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण भावनामृत की दृष्टि से इन सबको समझ लिया। तो जब भक्त होते हैं वो जब इन चीजों को पढ़ते हैं तो वो समझ लेते हैं कि किस कारण से ये सब चीजें श्रीमद् भागवत में पाई जाती हैं, परंतु वो इन चीजों को नहीं प्राप्त करते चाहते हैं। और फिर अभी जैसे अंजना नंदन प्रभु ने बताया शुरुआत में, हम इन संपत्ति दीर्घायु आदि का अर्थ भी अलग ले सकते हैं। दीर्घायु मतलब
शाश्वत
जीवन, केवल 100 साल से लेके 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल नहीं। हमको कैसा आयु चाहिए? इसमें अनंत, इसमें कभी मृत्यु ही नहीं हो। संपत्ति चाहिए, कैसा संपत्ति चाहिए? भगवान के धाम की संपत्ति चाहिए। लेकिन फिर भी और आगे भक्ति में बढ़ने से हमको ये भी नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहितुकी त्वयि। अहितुकी भक्ति चाहिए, हमको शाश्वत जीवन भी नहीं चाहिए, हमको भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए फिर?
सेवा
चाहिए, भगवान की अहितुकी प्रेम और प्रेम में ही सेवा चाहिए बस, जहां भी हो। तो ये अंतिम लक्ष्य, प्रेम पुमार्थो महान, सबसे ऊंचा लक्ष्य हमारा है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार शुद्ध प्रेम प्राप्त करना भगवान कृष्ण के प्रति। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। और अंत में हम एक श्लोक से समाप्त करेंगे। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं, यह संस्तुति की जाती है कि भक्तों अकाम कर्मियों सर्वकाम तथा ज्ञानियों मोक्षकाम को भगवान की पूजा करनी चाहिए। कौन सा श्लोक? अकाम सर्वकाम होगा मोक्षकाम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यजेत मतलब यजन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। किनकी? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की। तो किन व्यक्तियों को करना चाहिए? अकाम, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जो भक्त होते हैं वो। सर्व काम होगा, जिनके मन में सारे कामनाएं होती हैं, जो कर्मी लोग होते हैं। और फिर मोक्ष काम, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो जन्म चक्र मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार दी, इन सबको चाहिए तीव्रेण भक्ति योगेन, उनको तीव्रता से भक्ति योग का को स्वीकार करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो ऐसे तीव्रता से भक्ति करने के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, यह उद्देश्य हमारा होना चाहिए। बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। हमको ना स्वर्ग लोक से लेना देना है, ना हमें वैसे देखा जाए तो और किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, सिवाय भगवान की अहितुकी अप्रतिहता सेवा, निष्काम भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने की इच्छा रखना, यही सर्वोच्च धर्म है। अन्य जो भी धर्म है वो सब कैतव धर्म है, धोखेबाजी का धर्म है। हरे कृष्णा। समय हो गया ना काफी? एक या दो प्रश्न?
महाराज ऐसा बताते हैं कि ये भागवतम में परीक्षित महाराज ने पूरा भागवतम सुनने के बाद फिर उसको अपनी माता को फिर से बताया था, तो
ध्रुव महाराज
परीक्षित महाराज
परीक्षित महाराज
परीक्षित महाराज तो उन्होंने फिर उनको ये कुछ भी नहीं बताया जो उन्होंने सुना सुखदेव गोस्वामी से, उन्होंने कुछ अलग ही बताया. तो ऐसा क्यों किया महाराज, ऐसा क्यों?
क्योंकि कहाँ समय था इस सब बताने के लिए. ये बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं उनपे उनके पास कहाँ 7 दिन थे बताने के लिए. परीक्षित महाराज को तो कम से कम 7 दिन थे शुकदेव गोस्वामी से भागवत सुनने के लिए. लेकिन 7वें दिन पर भागवत कथा समाप्त हो गई और जैसे ही शुकदेव गोस्वामी ने अपने अंतिम उपदेश दिए 12वें स्कंद के बीच के भाग में ये वर्णन आता है कि शुकदेव गोस्वामी ने भागवत बोलना समाप्त कर दिया और फिर वहां से उठ के चले गए. मेरा काम हो गया, मैंने तुमको समझाया, अब तुम करो अपना जीवन साथ करो. सुखदेव गोस्वामी अपने ही भगवत भावना में थे, वो उठ के चले गए. फिर बाकी के जितने थोड़े बहुत अध्याय बचे हैं उनमें से बाकी सब और अन्य विषय सारे भागवत का सार वगैरह सब व्यासदेव जी बोलते हैं. तो प्राय 7 दिन लगे सुखदेव गोस्वामी को ये कथा बोलने के लिए. अब 7वें दिन पर जब ये हुआ तो फिर जब उत्तरा उनकी माता आई परीक्षित महाराज की, तो उनके पास कहाँ समय था ये सारी कथा बताने के लिए. इसलिए उत्तरा ने कहा कि मुझे संक्षेप में कुछ बताओ. तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे चीज़ें बताऊंगा संक्षेप में जो कि सारा सार आपको मिल जाएगा. तो उन्हीं कथाओं को नहीं बताया, लेकिन जो भगवान से प्रेरित जो उनकी कथाएं माई सार जो था शुकदेव गोस्वामी को, वो उन्होंने आगे चल के बताया. ठीक है. हाँ हरि राम.
जो अभी
भाव विभोर हो गया हरि.
हाँ, 108 बार ध्रुव महाराज का कथा चैतन्य महाप्रभु सुने और 108 बार प्रहलाद महाराज का कथा चैतन्य महाप्रभु सुने. तो मतलब अभी हम इसको क्या हम लोग आप बोल रहे थे हम सुनने के बाद वो बोल लग जाता बार बार. तो हम भी अभी इसको भागवत में रुचि आना है तो कैसा हम लोग हमारा स्तर के अनुसार कैसा उसको रुचि बढ़ाना चाहिए.
बस सुनते रहना है, सुनने से ही रुचि आएगी. जैसे पीलिया का रोग जब होता है किसी को, जॉन्डिस मराठी में क्या म्हणतात जॉन्डिस ला, कावीळ कावीळ म्हणतात ना, कावीळ साठी उपाय काय आहे, ऊसाचा रस. आणि ऊसाचा रस पीत राहायचं, त्यावेळी ऊसाचा रस पितो कावीळचा रोगी पितो त्याला काय गोड दिसतं का, ते गोड वाटतं, ते कडू वाटतं. पण काय रस कडू आहे का, रस गोड आहे पण त्याला कडू वाटते. समस्या कुठे आहे, त्याच्यामध्ये, रसामध्ये नाही आहे. बरोबर, रस में समस्या नहीं है. जो गन्ने का रस है वो मीठा होता है, लेकिन जो पीलिया का रोगी होता है उसको लगता है कि अरे ये रस कड़ू है. परंतु जैसे जैसे वो गन्ने का रस पीते रहता है, पीते जाता है, वैसे वैसे उसकी बीमारी ठीक होती जाती है. और फिर उसको धीरे 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 से वो जो मिठास है गन्ने के रस का वो मिलने लगता है. और फिर जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वो जब गन्ने का रस पीता है तो उसको बहुत मीठा लगता है. तो ठीक उसी प्रकार से जब हम भागवत का श्रवण प्रारंभ में करते हैं तो हो सकता है कि इतनी रुचि नहीं लगती हो, परंतु जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, प्रतिदिन इसका अभ्यास करते जाएंगे तो क्रमशः शनै शनै हमारे मन में भी ये रुचि उत्पन्न होगी, इसका मिठास का हम अनुभव कर पाएंगे. आई तो अभी हम भागवत का स्वाद तो लेंगे ही, लेकिन भागवत का और एक स्वरूप है, उसका भी स्वाद भी हमको लेना चाहिए। कृष्ण प्रसाद है ना, ठीक है ना? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री मुताय गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।